शंकराचार्य जी की एक बहुत ही आदरणीय रचना, ऐसी रचना जिसको अनेकों आचार्यों ने इतना आदर दिया कि एक ने बहुत ही विस्तृत इसके ऊपर संस्कृत कमेंट्री लिखी है। इसको जो है हमारे गुरुदेव भी, उनके गुरुदेव भी, सब लोग अपने हृदय में रखा करते थे। इस स्तोत्र में हम लोगों को पता लगता है कि एक भगवत स्वरूप गुरु की दृष्टि क्या होती है। जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन एक हमको दृष्टि देता है। हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इसकी उत्पत्ति के रहस्य हम कैसे देखते हैं, ये अनेकानेक दृष्टि ही दर्शन शास्त्र में बताई जाती। और जो भी ज्ञान की प्रक्रिया होती है वो केवल हम शास्त्रों की दृष्टि गुरु के माध्यम से प्राप्त करने की ही कोशिशें करते हैं। जब हम अपने गुरु के चरणों में बैठ के अध्ययन करते हैं तो क्या एग्जैक्टली प्राप्त करते हैं? हम लोग बेसिकली एक ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करते हैं। ज्ञान की दृष्टि वो लोग प्राप्त करना चाहते हैं जिनके अंदर यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि दुनिया में हमारे ज्ञान के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है, इसमें कोई शिकवे शिकायतें उचित ही नहीं है, केवल यही समस्या है कि हमको पता नहीं है, हमको अपने बारे में नहीं पता है, हमको बाकी के बारे में नहीं पता है। और इतना ही नहीं है कि नहीं पता है, उल्टा पता है, वो रगड़ा तब हो जाता है। अज्ञान से रगड़े नहीं होते, अज्ञान से पीड़ा भी नहीं होती, लेकिन उल्टे ज्ञान से समस्या होती, ये विपरीत ज्ञान हो गया। हम अंधेरे में जा रहे हैं, यहां पे कुछ पड़ा है हमको पता ही नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिस समय हम अज्ञान वशात एक कल्पना करते हैं कि सांप पड़ा हुआ, कुछ पहले भी हमको पता था कि कुछ पड़ा है, लेकिन कोई कल्पना नहीं करी, ऐसा विपरीत निर्णय नहीं करा, तो मन में कोई भय नहीं होगा। एक इंक्वायरी होगी, क्या चीज हो सकती है, और उसके बारे में एक वैलिड ज्ञान प्राप्त करने की विनम्र कोशिश होगी। जो व्यक्ति भी अपने बारे में, दुनिया के बारे में, इसके मालिक के बारे में, जो भी परम सत्य है उसके बारे में नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं पता है हमको। लेकिन जब हम अपने अज्ञान का एहसास रखते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति जानने की विनम्र कोशिश करता है उसको जिज्ञासु बोलता है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रार्थी है, इच्छुक है वो। और एक बार व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है, उसमें तो एक चैलेंज है, उसमें तो एक परस्यूट है, उसमें तो एक एक्सप्लोरेशन है, गहराई में जाने की विनम्र एक एडवेंचर है जो बड़ी रोमांचकारी होती है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा बड़ी रोमांचकारी होती है, ऐसी कोई तीर्थ यात्रा नहीं होती, कोई टूर नहीं होता है, कोई ट्रैवल नहीं होता है। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन बड़े विरले जो इस ज्ञान के इस यात्रा पे चलते हैं। हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई शुरुआत में कहीं और तीर्थ करके आ जाओ, घूम के आ जाओ, चलना है हिमालय, कैलाश मानसरोवर, तुमको अपनी नानी की याद नहीं होगे तो नानी याद आ जाएगी, ऐसी भयंकर यात्राएं होती हैं। ऐसी यात्राएं होती हैं जो कि हमको भगवान की याद दिलाती हैं, उनका भरोसा उत्पन्न करवाती हैं, और हर पग जो है बड़ा रोमांचकारी होता है। ये बाहर की तीर्थ यात्रा इसीलिए बनाई जाती है कि तुम ट्रेनिंग कर लो यात्रा के लिए, असली यात्रा तो कुछ और है, अभी वास्तविक यात्रा में तुमको ले चलना बाकी है। इरादे तो हैं मगर तब तैयारी तो करो। तो इस तरीके से यो यात्रा जो कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, हमको नहीं पता है वहां से पता करने की यात्रा है। क्यों ये कार्य व्यक्ति जो भी देश में जो समाज में करता है उसको प्रणाम है, उसको सलाम है। वही लोग इस दुनिया में आदरणीय होते हैं, वही लोग मुक्त हो जाते हैं। जो भी ज्ञान व्यान है इस दुनिया में सब हमको एक ही चीज बताते हैं कि आप जो है वो केवल जीवन की वास्तविकता जान जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। यही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत परमानंद है, केवल ज्ञान की महिमा। और इसी ज्ञान की तैयारी के लिए दुनिया भर की दूसरी चीजें होती हैं। ज्ञान की प्राप्ति जीवन में अल्टीमेट गोल। गीता के अंदर एक वाक्य आता है 4 चैप्टर में, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन नहि ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस पूरी दुनिया में ज्ञान के अलावा कोई ऐसी पवित्रकारी चीज नहीं होती। नहीं नहीं महाराज जी, हमको तो कैंसर है, आपका ज्ञान ठीक कर देगा क्या कैंसर? हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये समस्या है, और समाज की समस्या है, और आर्थिक समस्या है, और आजकल तो भयंकर राजनीतिक समस्या चल रही है, आपका ज्ञान क्या करेगा? बोलते हैं हम तो भी इसी बात पे दृढ़ हैं भैया, तुमको ये ज्ञान सब समस्याओं से निदान दे देगा, मुक्ति दे देगा, जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापे की समस्याएं हैं ये ज्ञान प्राप्त करो। महाराज जी हम यंग हो जाएंगे क्या? हमारे दुनिया भर में हर घुट में हर जोड़ में दर्द होता रहता है, क्या ब्रह्म ज्ञान से ठीक हो जाएगा? बोलते हैं हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसी औषधि है कि अवश्य तुमको ये सब समस्याओं से मुक्ति मिलती है, विश्वास करो। जब तक कोई ज्ञान का ऐसा आदर नहीं करता है, इस दृष्टिकोण से नहीं देखता है ज्ञान को, तब तक वो ज्ञान का पिपासु नहीं बन पाता। इतनी महिमा होती है ज्ञान की, हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए। आप भजन भी करो, योग भी करो, ध्यान करो, जप करो, अनुष्ठान करो, सब करो, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति को जीवन में गोल रखो। तो यही ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो इच्छुक होते हैं वही किसी गुरु के पास जाते हैं, वही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। यहां जो स्तोत्र लिखा जा रहा है, जो भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो आदि ब्रह्म है, परमात्मा है, वो ज्ञान की मूर्ति है, और वो जिस समय हमको ज्ञान देने के रूप में अवतरित हुए उसको दक्षिणामूर्ति कहा है। दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर का, जो कि पर ब्रह्म परमेश्वर, हम उन्हीं को बता रहे हैं, जो भी किसी नाम से बताए नो प्रॉब्लम, वो सदाशिव समारंभाम, सदाशिव से जो प्रारंभ हुआ है ये ज्ञान की परंपरा, उन्होंने बड़ी कृपाएं करी। भगवान शंकर जो है ना, वो किस किस चीज के गुरु हैं उन्होंने पढ़ा होगा। व्याकरण के सूत्र भगवान शंकर ने पहली बार दिए थे, पूरा सूत्र उनके डमरू में से वो आवाजें निकली और उन्होंने ज्ञान दिया। पाणिनि सूत्र वहां से चालू होता है, योग का उन्होंने दिया, भक्ति का उन्होंने दिया, रामायण भगवान शंकर ही ने तो दी थी। पूरी रामायण जो है भगवान शंकर उमा जी को बता रहे हैं, वो आदि गुरु है, उन्होंने ही ब्रह्म ज्ञान भी दिया है, वेद भी उनके ही मुख से निकले हैं, ऐसा ही देखना चाहिए। नाम कोई भी दो उनको, अब जिसके जो इष्ट होते हैं, अभी बॉम्बे में एक जगह हम गए थे, हमने बोला देखो तुम इस जंगल में जा रहे हो, माहिम नेचर पार्क में, हमने सबसे बताया यहाँ बहुत सारे सांप वाप होते हैं, हमने सुना है कि करीब 11 प्रकार के सांप हैं, तो तुमको सलाह ये है कि ओम नमः शिवाय जपते रहना। सब सांप जो है ना शिव जी के बड़े प्रिय होते हैं, उनके गले में आलिंगन करे रहते हैं, उनको एम्ब्रेस करे रहते हैं, इतना प्यार करते हैं, इसीलिए तुम शिव जी का स्मरण करोगे तो तुमको कोई सांप नहीं बॉदर करेगा। हमने ऐसे ही सबको प्रेरणा दी। तो एक वहां से छोटी यंग लड़की थी, वो आई हमारे पास, गुरु जी एक क्वेश्चन। हम बोला क्या? बोलते वाई भगवान शिव, वाई नॉट भगवान कृष्ण? हम बोला अरे माता जी तुम कृष्ण जी को भजो, राम जी को भजो, माता जी को भजो, बजरंग बली को भजो, जिसको भजना है भजो, लेकिन तुम अपने इष्ट देवता को एक नाम में क्यों संकुचित करते हो? उनका अपने आप में एक नाम नहीं है, एक रूप नहीं है, मगर तुम अपनी ना समझी से उनको संकुचित करते हो। यू आर ओनली कृष्ण, यू आर नॉट शिवा, ये क्या बचपना है? तो कोई भी नाम दीजिए आप, जिस रूप से आप भगवान को भजते हैं वही आपके लिए परब्रह्म परमेश्वर है। वो जब हमको ज्ञान देने के लिए आते हैं उस समय उनका नाम दक्षिणामूर्ति है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में स्तोत्र है क्योंकि यहां उनकी स्तुति करी जाती है। स्तुति से जो तरा दे हमको उसको स्तोत्र बोलते हैं। तुम तर जाओगे कि वो स्तुति मात्र से ही इतना ज्ञान उसके अंदर भरा होता है। तो यहां 10 श्लोक हैं बेसिकली। इन 10 श्लोक के स्पेक्ट्रम में हम लोगों को जीवन दर्शन के हर पहलू बताए जाते हैं। बड़ा अद्भुत है, ऐसी रचनाएं बड़ी रेयर होती हैं। तो उसके ऊपर जो है यहां पे हमने वैसे बताया, अनेकों आचार्यों ने क्या क्या लिखा है इसमें, वही टीकाओं में लिखते हैं। दक्षिणामूर्ति शब्द के उसका जो अर्थ है वो ये आता है कि जो दो तरह से इसके अर्थ देखे जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए और एक थोड़ा विचारवान व्यक्ति के लिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए दक्षिणामूर्ति शब्द का ये मीनिंग होता है कि जो दक्षिण दिशा में जिनकी मूर्ति जिनका फेस पॉइंट कर रहा है। तो इसको जो है वो कहा जाता है कि ये यस्य मूर्ति दक्षिणा अभिमुख, बहुव्रीहि समास है ये, दक्षिणामूर्ति का जिसका मूर्ति जिसका फेस जिसका शरीर इट इज फेसिंग साउथ। बोलते हैं इसका क्या मतलब है भाई? बोलते हैं इसका मतलब यह है कि भगवान बड़े करुणामय है। जब भी हम लोगों के देश में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो नॉर्थ की तरफ हिमालय में जहां पे ऋषि मुनि लोग रहते हैं उस दिशा में देखता है। नॉर्थ ऊपर चलने को बताया जाता है, नॉर्थ जीवन की आगे की यात्रा उत्कृष्ट यात्रा का सूचक होता है। हम जिस समय उत्तर की दिशा में देखें तो हमारे गुरु को किस दिशा में देखना चाहिए? वो जो है दक्षिण दिशा में देखेंगे तभी एक इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। दक्षिण दिशा में देखना ये गुरु की करुणा का सूचक होता है। जब भी वो दक्षिण दिशा में मुड़े हुए हों तो हमको उत्तर दिशा में मुड़ के इस ज्ञान की यात्रा का श्री गणेश करना चाहिए। उस समय हमारे भगवान हमारे गुरु दक्षिणामूर्ति बन जाते हैं। यहां पे फिजिकल दिशा की बात नहीं है, नॉर्थ इज लुकिंग अप, ऊपर देखने की बात है। तो जिस समय आप जीवन में सबसे उच्चतम ऊंचाई को देखना चाहते हैं तो गुरु को हमारे लेवल पे आके देखना पड़ता है। तो बड़ी सुंदर बात है ये। लेकिन भगवान के जो अवतार भी होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं कि हम लोग को प्रॉब्लम है, भगवान हमारे लेवल पे डिसेंड कर, हम जहां पे खड़े हैं भगवान मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं। इसी शरीर से प्रॉब्लम है ना जो हम धारण करके आते हैं, इसी शरीर के वजह से रिश्ते नाते काम धंधा सब प्रॉब्लम है तुमको, हम आते हैं। वो हमारे लेवल पे आते हैं, हमसे इंटरैक्ट करते हैं, हमको जीना सिखाते हैं, हमको अनेकों समाधान देते हैं, दृष्टि देते हैं। ये जो है दक्षिणामूर्ति शब्द का एक मीनिंग है। एक दूसरा मीनिंग जो है दक्षिणामूर्ति का, वो जो है इसको कर्मधारय समास बोलते हैं। उसमें वर्ड को अलग तरीके से ब्रेक करा जाता है और उसमें यह है कि दक्षिणश्च असौ अमूर्ति, जो वस्तुतः अमूर्ति है, इट डजंट हैव एनी फॉर्म। दक्षिणा अमूर्ति, इनको दोनों को मिक्स कर दो तो दक्षिणा मूर्ति एक वर्ड बन जाता है। तो उन्होंने ब्रेक करा, बोलते हैं कि दरअसल भगवान जो परब्रह्म है ही इज नॉट हैविंग एनी फॉर्म। अब जिसको जो है भगवान को पकड़ने के लिए फॉर्म चाहिए बोलते हैं, तुम्हारे लिए पहली डेफिनेशन है, उनको साउथ की तरफ फिशिंग है और वो इस टाइप से हैं, और भी डिटेल आएंगे कैसे देखना चाहिए उनको। उनके ध्यान श्लोक में आते हैं मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, वट वृक्ष के नीचे बड़े यंग से भगवान बैठे हुए हैं और आसपास बहुत ही वरिष्ठ ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग बैठे हैं, वो भगवान के फॉर्म दिया जाता है। जब भी हमको भगवान शंकर का फॉर्म दिया गया, अब ये फॉर्म जो है किसी फोटोग्राफर ने देखा तो है नहीं, है ना, किसी कलाकार ने अपनी तरफ से बनाया है और वो हमको अनेकों गुण उसमें जो है अभिव्यक्त होते दिखाई पड़ते हैं, हमको रिलेट करते हैं उनसे, उनकी याद लाने का एक तरीका है। और केवल भगवान शंकर का ही नहीं, जितने हमारे देवी देवता है, हम जिनको पूज रहे हैं वो किसी कलाकार की कला के सूचक हैं। ओरिजिनल किसने फोटो देखी भगवान की? राम जी जो है साउथ में वो अलग कॉम्प्लेक्शन के होंगे, नॉर्थ में अलग कॉम्प्लेक्शन के होंगे, और पहाड़ों में चले जाओ तो वो जो आंखें भी उनके अलग हो जाएंगे। ये तो सब कलाकारों की भावना है। इसीलिए यहां पे वो डिटेल्स हमारे लिए उपासना के लिए अच्छे होते हैं। देखिए उपासना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उपासना हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, प्रेरणा का माध्यम होता है, एक आलंबन होता है। हम सदैव उनका आश्रय लेते हैं, अपनी भावना को प्रकट करते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होना चाहिए जो बहुत ही हमको इंस्पायरिंग लगे, प्रिय लगे, फॉर्म उस चीज के लिए जरूर, ऐसे काम के लिए। अन्यथा कोई भी फॉर्म होता है नश्वर होता है। हर फॉर्म एक दिन धारण करा जाता है और एक दिन छूटता है, और कोई भी किसी का रूप होता है, रूप सदैव हमको लिमिट करता है। रूप हमारा यही है, हर जगह तो है नहीं। हम रूप को पकड़ेंगे तो खुद ही संकुचित हो गए ना, इसी जगह हम मिलते हैं, दूसरी जगह नॉट अवेलेबल। इसीलिए रूप को पकड़ने के अनेकों लिमिटेशंस भी होते हैं, लेकिन रूप को पकड़ने के फायदे भी। जिस जिससे हमको बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, ऐसा कोई रूप हर व्यक्ति को पकड़ना चाहिए निश्चय। तो वो जो सामान्य लोग होते हैं वो भगवान दक्षिणामूर्ति को जब पकड़ते हैं तो बोलते हैं तुमको हम पहली डेफिनेशन बताते हैं, साउथ फेसिंग भगवान। साउथ फेसिंग के भी रहस्य बता दिए, ओ आई सी वेरी कंपैशनेट, क्या करुणा है उनके अंदर। दक्षिण दिशा में हम उत्तर दिशा में देख रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हिमालयस एंड द ऋषिज, और भगवान हमारी दिशा में देख रहे हैं। जय हो जय हो जय हो, अच्छा लगता है देख के, प्रेरणा मिलती। लेकिन जिस समय कोई वास्तविक बुद्धिमान कोई स्टूडेंट है, उसके लिए दक्षिणामूर्ति का शब्द का मीनिंग ही अलग हो जाता है। तो नो मूर्ति, अमूर्ति, कोई फॉर्म ही नहीं है भगवान का। और जो जीवन की परम सच्चाई होती है उसका फॉर्म नहीं हो सकता है, थैंक गुडनेस नहीं हो सकता है। जिस दिन उनका फॉर्म हो जाए, जिस दिन उनका रूप हो जाए, तो वो संकुचित हो जाएंगे, नश्वर हो जाएंगे, जन्म होगा और आगे उसके बाद जो होता है वो भी होगा। एक दिन समाप्ति होनी है। हर फॉर्म की पूरी जीवन की कहानी वेव फॉर्म में चलती है। एक दिन जन्म होता है, फिर धीमे धीमे वृद्धि होती है, बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, चरम पे होती है एनर्जी, शरीर की स्फूर्ति और उत्साह और उमंग पूरी, सब मशीन फिट फाट होती है, जितना मजा लेना ले लो क्योंकि अब दूसरा करो चालू होने वाला है। धीमे धीमे शरीर शिथिल हो जाता है, जर्जर होने लगता है और बुढ़ापा, बीमारी, सब जीवन की यथार्थ फॉर्म के दृष्टि से, कोई रूप के दृष्टि के कौन यहां है दुनिया में, भगवान के अवतार भी आते हैं, उनको भी एक दिन जाना होता है। भगवान राम जो है अयोध्या में, उन्होंने अपनी जल समाधि ले ली थी, वहां चले गए थे। भगवान कृष्ण के पैर पे तीर लग गया था, उस समय उनकी काफी 80+ उम्र थी, उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। जहां पर भी कोई फॉर्म होगा वो नश्वर होगा, लेकिन हाँ कोई भी फॉर्म इतनी अद्भुत चीज होती है कि जब कोई रूप ले लेता है तभी उसका जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है, सेवा हो पाती है, इंटरैक्शन हो पाता है। हमारे गुरु जीते जागते थे, इसीलिए तो बात हो पाई, इसीलिए तो ज्ञान हो पाए। ज्ञान सदैव रूप से होता है, किसी रूपवान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान आप हर जगह हैं, ज्ञान दीजिए, बोलते दे तो रहे, तुम पढ़ो, डिसाइफर करो उसको, हम तो हर पल तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो हमारे पल्ले भी नहीं पड़ेगा, हमको समझ में भी नहीं आएगा। रूप धारण करके ही भगवान यहां जगत कल्याण करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमको गीता देते हैं, हमको उपनिषद मिलते हैं, सब केवल कोई रूप धारण करने के बाद ही ये काम होते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सब लोगों का रूप है, आपको जब तक जीवित हो ना, सबके प्यार दे सकते हो, सेवा कर सकते हो, कुछ ना कार्य कर सकते हो, कुछ ना कुछ, ये सौभाग्य तभी तक है जब तक हम लोगों का रूप है, लेकिन रूप एक दिन जाएगा नहीं, ये इनिंग है थोड़े दिन की। जब तक बैटिंग मिली है, बॉलिंग मिली है, तब तक खूब खेलो, बहुत अच्छी तरीके से, डू योर बेस्ट। कोई डर, कोई संकोच, कोई शिथिलता, कोई ढीलापना, कुछ नहीं आने पाए, ऐसे बढ़िया तरीके से खेलो, लेकिन मनी मन सच्चाई में जगे रहो कि ये थोड़े दिन की इनिंग्स है, पेविलियन वापस लौटना है, वापस जाना है। इसीलिए रूपवान परम सत्य नहीं होता है। जो जीवन की परम सच्चाई होती है, शाश्वत सच्चाई होती है, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी होती है, इट हैज टू बी फॉर्मलेस। इसीलिए परमात्मा अगर हमको ज्ञान देते हैं तो कहानी चालू होती है अमूर्ति से, फिर मैनिफेस्ट हो जाती है मूर्ति में, तो वो जो है अमूर्ति है और दक्षिणाचार जो दक्ष है, जो बहुत दक्ष होता है, किसी चीज में बहुत एफिशिएंट होता है, जो कार्य करते हैं उसकी सफलता पूरी गारंटीड होती है, क्योंकि ही गिव्स आउट हिज बेस्ट। अगर ज्ञान देते हैं तो एहसास देते हैं कि दुनिया चकाचौंध है, पूरी फिलॉसफी वर्ल्ड में वेदों के द्वारा दिया हुआ वेदांत ज्ञान सब नमन करते हैं, इसको इतनी अद्भुत प्रकार से दिया हुआ है, इतनी दक्षता से दिया हुआ है, वो दक्षिण है। सो दक्षिणः च असौ अमूर्तिश्च, जो दक्ष है और अमूर्ति, ही इज फॉर्मलेस एंड ही इज हाईली एफिशिएंट, ही इज अमेजिंग। अगर ऐसे को याद करना हो इस दक्षिणा मूर्ति से अच्छा कोई शब्द नहीं होता। तो ये वास्तविक मीनिंग है किसी प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञानवान समझदार व्यक्ति के लिए दिस इज द डेफिनेशन। ऐसे भगवान जो बहुत दक्ष हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन फॉर्मलेस हैं, वो हमको यहां पे उनकी चर्चा हो रही, उनकी स्तुति हो रही है। ज्ञान सदैव ज्ञानी के अंदर मैनिफेस्ट होता है। ज्ञान अपने आप में कोई चीज अलग नहीं होती। ज्ञान सदैव किसी ज्ञानी की आधार बना के ही अभिव्यक्त होता है। तो ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान हमारे गुरुदेव में आते हैं, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान हमारे आचार्यों में आते हैं, जो दक्ष भी हैं अमूर्ति भी हैं, उन्होंने ही अपने आप को इनके हृदय में मैनिफेस्ट करा हुआ है। तो इस तरीके से दक्षिणामूर्ति भगवान को देखना चाहिए, इज फुल ऑफ नॉलेज और इसीलिए बड़े एम्पावर्ड हैं, सक्षम है, समर्थ है, संतुष्ट है, धन्य है, एंड एट द सेम टाइम फॉर्मलेस। देखो, फॉर्मलेस को पकड़ोगे ना तो मरने के बाद भी बना रहेगा। जब जब किसी फॉर्म को पकड़ोगे, टेम्परेरी एसोसिएशन होगा, एक दिन संयोग होगा और एक दिन वियोग होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बाकी का भी आनंद लो, जब तक यहां पे अनेकों रूप हैं, खूब प्यार से सेवा करो, लेकिन ये याद रखो कि वास्तविक तत्व तो अमूर्ति होता है। ऐसे दक्षिणामूर्ति का स्तोत्र है, उनकी स्तुति करी जा रही है, उनको अपने मन में लाया जा रहा है। वेरी ब्यूटिफुल, बड़ी अमेजिंग सी है, दृष्टि भी कितनी बढ़िया है। तो यहां पर जो है, उन्होंने तो आचार्य ने तो 10 श्लोक लिखे, लेकिन बाद में आचार्य लोगों ने उसके ध्यान श्लोक लिखे। कुछ ध्यान श्लोक किसी ओरिजिनल स्तुति का पार्ट नहीं है, ये हमारे दूसरे अनेक अनेक बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पे इस किताब में केवल ओरिजिनल स्तोत्र लिखा हुआ है, ध्यान श्लोक चीजें नहीं लिखा हुआ है। ध्यान श्लोक तो नहीं है ना इसके अंदर? हाँ, तो वो जो है इसके अंदर हम लोग इस समय तो नहीं लिखा है, लेकिन ये इसका जो है निश्चित रूप से एक प्रचलित पाठ है, जो कि आदमी को यहां पढ़ना चाहिए और चैंटिंग में वो स्वामी जी आप लोगों को सिखा भी देंगे। उसका पहला श्लोक मात्र हम यहां पे थोड़ा रेफरेंस दे देते हैं कि वो आता है कि मौन व्याख्या प्रकटत पर ब्रह्म तत्व युवानम। एक बड़े युवा गुरु है, तो दक्षिणामूर्ति भगवान युवा है। अब देखिए, जब भी वर्ड यूज करते हैं ना, उसके अनेकों कॉनोटेशन होते हैं। युवा जब बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? शरीर जवान है, और बोलते हैं हाँ जवानी तो है, लेकिन अनेकों लोग, यंग लोग भी बुढ़ा गए और अनेकों वृद्ध लोग भी बड़े यंग हैं। इसीलिए वास्तविक युद्ध किसके अंदर है? जो उत्साह और उमंग से युक्त है, जीवंतता से युक्त है। आर्टिस्ट बनाएगा तो उसको तो यंग बनाना पड़ेगा, यंगस्टर बना देगा। दक्षिणामूर्ति भगवान की पेंटिंग करो, अच्छा महाराज जी, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, ओके आई स्टार्ट विद युवा, और वो यंग कोई बना देगा, बैठा देगा, और आसपास बड़े सब जो है वो वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, तो उनको बुढ़ा बना देगा। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये होता है कि किसके अंदर जीवंतता है, उत्साह उमंग है, और कौन थका हुआ है। जो थके हारे हुए हैं वो बुढ़ा गए, जो जीवंत हैं उत्साही हैं वो जवान हैं। इस डेफिनेशन से अगर देखो तो वहां पे फिजिकल एज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वहां पे आदमी का दिमाग हृदय में भावना इम्पॉर्टेंट है। हमको इस प्रसंग में सदैव वो याद आता है, एक व्यक्ति को हमने गुरुदेव के पास कैंप के लिए प्रेरणा दी, जाओ उनका कैंप चल रहा है तो तुम सुन के आओ। तो उसने कैंप सुना और बाद में अपने संस्मरण हमको पत्र में लिखे। तो उसने लिखा कि गुरुजी हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, मगर आपको बताएं जोधपुर के थे वो महाराज, स्टूडेंट था लेकिन घर में कुछ मजबूरी के वजह से छोड़ छाड़ के उसको परिवार के काम धंधा संभालना पड़ा, कोई था ही नहीं, सब देहांत हो गया था किसी का, तो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसने अपना वो अनुभव जो वहां लिखा था वो ये था कि हमको ऐसा लगा कि स्वामी जी डंडा लेके धीमे धीमे आ रहे हैं, पीठ भी झुकी थी थोड़ी सी, डंडे का सहारा ले रहे थे। बोला अरे भाई दिनेश लेट हो गया थोड़ा, अगर हम थोड़े कुछ साल पहले आ जाते, ये विभूति हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में हर जगह उन्होंने बहुत ही मुंह पंखा है। आज विश्व हिंदू परिषद जो है वो अपने गुरुदेव के द्वारा ही बना हुआ था, पूरी दुनिया भर में फैल गया है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क हो गया है, हिंदुओं की आवाज राजनीतिक क्षेत्र तक लाने के लिए फोरम बनाया था। और एक चिन्मय मिशन बनाया है जहां पे आध्यात्मिक ज्ञान जन जन को पहुंचाने के लिए वो संसार बनाए। दोनों कितनी फलित हुई हैं तो बड़ी विभूति है वो थे। तो उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा लेट हो गए, महाराज जी बुढ़ा गए हैं, अब क्या बताएंगे। तो उसने प्रवचन चालू हुआ, ऐसा उत्साह उमंग जीवंतता मस्ती और ह्यूमर और गंभीर चिंतन। बोला ये सब हम सोच ही नहीं पाते हैं, हमारा कैसा दिमाग हो गया है, ढीले पड़ गए हैं, बुढ़ा गए हैं, न उत्साह है, न उमंग है, न जीवंतता है, न प्रसन्नता है। बुढ़ापा शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में घुस गया, हम ढीले पड़ गए और जवान है तो ये जवान है। तो हमको बहुत उसका जो है वो ऑब्जर्वेशन और उसका प्रेजेंटेशन आज तक याद रहता है, और वही दक्षिणामूर्ति भगवान की कहानी है। जो जीवन की वास्तविकता और अपनी वास्तविकता से अवगत होता है वो युवानम। और ये कैसे व्याख्या करते हैं, बोलते हैं कि मौनम व्याख्या। इनकी व्याख्या बड़ी साइलेंस में होती है। तो बोलते महाराज जी ये कैसा प्रवचन चल रहा है, शिष्य भी बैठे हुए चुपचाप, गुरु भी चुपचाप बैठे हुए हैं और ज्ञान हो रहा है। बोलते हैं मौन व्याख्या एक सांकेतिक ज्ञान को बोलते हैं। सांकेतिक ज्ञान देखिए कभी भी परमात्मा की डेफिनेशंस नहीं हुआ करती है। हम लोग शब्द बड़े उत्साह से प्रयोग तो करते हैं लेकिन शब्दों की बड़ी सीमाएं होती हैं। बहुत ज्यादा शब्दों में सामर्थ्य नहीं होता है हमको बताने के लिए। ये मीडियम बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा लिमिटेड मीडियम होता है। किसी के प्रति बड़ा प्यार हो तो भी तो नहीं बता पाते हो, दुनिया भर के उधार के शेर व शायरी लाते हो तो भी मन के अंदर लगता है यार वो पूरी बात तो कह नहीं पाए जो कहना। भावना को प्रकट करने में भी हम अनेकों बार बेबस हो जाते हैं। यू नो दैट यू हैव नॉट डन जस्टिस। उसमें कवि तो ये लिखते हैं कि हे प्रभु हमारी जवान से हम आपकी कैसे स्तुति करें, आंखें जो देख रही हैं आंखों के पास जवान नहीं है, और जवान जो बोल रहे हैं उसने देखा नहीं है। कैसी विडंबना है, जवान लपड़ 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 बोलते रहते हो, बोले तुमने देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा है, आंख ने देखा है, हम उसका सत्संग करके आ रहे हैं। जो आंख ने देखा है वो हम बता रहे हैं, लेकिन आंख के पास जवान नहीं है। जो जो शब्द हम लोग यूज करते हैं वो कभी सच्चाई बखान नहीं करती पूर्ण रूप से। इसीलिए कहा जाता है गॉड डिफाइंड इज गॉड डिफाइंड। आपने जहां भगवान को शब्दों में ढाल दिया आपने संकुचित कर दिया। इसीलिए शब्दों से नहीं, शब्दों के माध्यम से सांकेतिक अंदाज से परमात्मा को बताया जाता है। वेदांत की भाषा में परमात्मा किसी भी शब्द के मुख्यार्थ नहीं होते हैं, लक्ष्यार्थ होते हैं। आत्मा का ज्ञान देना हो, परमात्मा का ज्ञान देना हो, बोलते हैं कि देखो भैया हमारी मजबूरियां हैं, हम शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन को शुरुआत में ही बता देते हैं शब्द दे आर वेरी फ्रेजाइल, वेरी लिमिटेड, वेरी इनकॉम्पिटेंट, लेकिन हमारे पास और कोई तरीका नहीं है शब्द के माध्यम से ही जो शब्दातीत है उसका संकेत कर सकते हैं। सांकेतिक लक्षणाओं को बताने की प्रक्रिया को बोलते हैं मौन व्याख्या। पॉइंटर्स दिए जाते हैं और गुरु और शिष्य का जब दिल तालमेल होता है ना अच्छा, तो आप संकेत समझ जाते हैं। और यहां बोलते हैं कि चिन्ह मुद्रा आनंद रूपम, चिन्ह मुद्रा जो है ये एक मुद्रा होती है, इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा, जहां अंगूठा और आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर होती है उनको मिला दिया जाता है, बाकी तीन से अलग कर देते हैं। ये मुद्राओं की दुनिया है। नाट्य शास्त्र में तो मुद्राओं का बहुत ही प्रयोग होता है, केवल सांकेतिक भाषा। इंडेक्स फिंगर जो है जीव का सूचक होती, ईगो का सूचक होती, इंडिविजुअलिटी का सूचक होती है। इंडिविजुअलिटी अपने आप में यथार्थ होती है, जीव भाव यथार्थ होता है, वो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, सब ब्लेसिंग। लेकिन इसको जो अंगूठा है वो परमात्मा का सूचक होता है। इन दोनों का एकता डिस्कवर करनी चाहिए। जीव अगर परमात्मा स्वरूप हो जाता है वो एक ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। और इसके लिए जीव को क्या करना पड़ता है कि तीन उंगलियों से अलग होना पड़ता है। बाकी तीन उंगलियां क्या है महाराज जी? बोलते हैं माया के तीन गुण हैं, इस सत्व रजस और तमस है। जब तक हम ये त्रिगुणात्मका प्रकृति और माया से इसी से तादात्म्य करके स्थित रहते हैं तो वहां पे जो है संसार चालू होता है। और अगर आप अपने आप को गुणातीत करते हुए इन तीन गुणों से परे अपनी सत्ता को पहचान के आप परमात्मा से अपनी एकता डिस्कवर कर लेते हैं। इस मुद्रा को चिन्ह मुद्रा कहते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान देती। अगर कोई व्यक्ति इन सब रहस्यों को जानता हो तो उसको ये पूरे शांति में, साइलेंस में, केवल मुद्रा मात्र से हम जीवन के रहस्य बता। तो ऐसे युवा भगवान बैठे हुए हैं, मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। और जो उनको चारों तरफ से घेरे हुए बैठे हैं वो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं। ब्रह्मनिष्ठ लोग मतलब ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति में रमने वाले। परमात्मा के ज्ञान के आकांक्षी लोग, दुनिया की सब चीजों को किनारे करके जिनका फोकस केवल जो जीवन की सच्चाई है उसको जानने के लिए डेडिकेटेड हो गया, उनको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। निष्ठ मतलब समर्पित, उसी के लिए फोकस्ड, नो अदर प्रायोरिटीज। तो ऐसे लोग उनको घेर के बैठे हुए हैं और उनके द्वारा बहुत ही शांति के वातावरण में एक संवाद चल रहा है। अब इसके ऊपर हम और भी चर्चाएं कर सकते हैं लेकिन इस समय इतना ही पर्याप्त है बताना कि ये मौन व्याख्या का ही अर्थ समझिए। आगे की और अर्थ यह होता है कि आप जिस समय खुद शांत हो जाते हैं, अनेकानेक शब्दों के चिंतन मनन के द्वारा आपके अंदर सब अध्यारोपों का अपवाद हो जाता है, सब कचरा साफ हो जाता है। जैसे बाहर स्वच्छ भारत है ना, वैसे आपका मन भी स्वच्छ मन हो जाए, सब कचरा साफ हो जाए। जब ऐसे मन में सब मलिनताएं, सब अध्यारोपों का अपवाद हो जाता है, उस साइलेंस में ही अधिष्ठान का अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है। वहां कोई शब्दों की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको उस तत्व का साक्षात अप्रोक्ष अनुभव सामने ही है, हमको पता नहीं था बस। अनेकों गलत फहमी मन में पड़ी हुई थी, भगवान सामने खड़े हमको दिख ही नहीं रहते। इसीलिए कहा जाता है कि मन के अंदर अनेकों मलिनताएं दूर करो, और जिस समय सब मलिनताएं दूर हो जाती हैं आपको सामने रिवील हो जाते हैं। साइलेंट रहो, ध्यान रहो, जग जगे हुए रहो, अलर्ट रहो। बोलो वालों ने पूछा, ऐसे समय आपको अपनी वास्तविकता रिवील होती है। तो ऐसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के उनके जो है रूप का कवि लोगों ने ऐसे बढ़िया बढ़िया वर्णन करे हुए हैं। अब हम लोग जो है स्ट्रेट अवे स्तोत्र में प्रवेश करें। स्तोत्र की 9 श्लोकों की लास्ट लाइन से 10वें की कंक्लूडिंग जो लास्ट लाइन है वो डिफरेंट है, बाकी 9 जो है इनिशियल जो श्लोक है उसकी अंतिम लाइन यह है, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। ये कॉमन लाइन है। और तस्मै उन, तस्मै मतलब उनको, इनको जिसका वर्णन हमने पहले 3 लाइन में करा है। तो कुछ ना कुछ प्रारंभ की 3 लाइन में चर्चा करने के बाद फिर बड़े आदर से बोलते हैं वो जो हमारे हमको ज्ञान देने वाले परमात्मा हमारे गुरु बन के आए हैं, जो तस्मै श्री गुरु मूर्तये, गुरु की मूर्ति धारण करे हुए हैं, जो गुरु के अंदर जो ज्ञान देने का है ना वो वही परमात्मा ज्ञान देते हैं। इसीलिए हम लोग तो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा। गुरु को ही ब्रह्म देखना चाहिए। जो गुरु को ब्रह्म नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं, उनको दूसरा रूप दिया जाता है भगवान का। जितने मंदिरों में रूप होते हैं वो ऐसे लोगों को विशेष रूप से दिए जाते हैं कि तुम्हारी उपासना वंदना भगवान की तरफ हो, ऐसे भगवान जिस मूर्ति के रूप से बैठे हैं। वो हमारे एक अभ्यास का एक सौभाग्य भी नहीं मिलता सबको, हम किसी ज्ञान व्यान गुरु के पास रह के सदैव सेवा करें। इसीलिए बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीका है, मूर्ति बनाओ, भगवान को देखो, सेवा करो। लेकिन ये समझे रहो कि अगर हमारे जीवन में भगवान की कृपा होगी तो वो जीते जागते एक व्यक्ति की तरीके से आएंगे। कोई मूर्ति नहीं आएगी, मूर्ति किसी पाषाण की होती है, पत्थर की होती है, संगमरमर की होती है, मेटल की होती है, और जितनी मूर्तियां हैं ना वो बहुत सी सौम्य होती है, कुछ बोलती नहीं है। मंत्र गलत हो जाए तो मूर्ति नहीं बोलेगी, गुरु के सामने गलत बोलो एकदम टोक देंगे, शिष्टांतर। मंदिर में जाके बोलोगे भगवान पड़े करुणा में, कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये लोग बड़े डेंजरस होते हैं, बड़ा टीका टप्पणी करते हैं, ननू नच करते हैं, बीच में जो है वो रोकते हैं, डांट भी लगाते हैं, कान भी पकड़ते हैं और सब दुनिया भर का काम करते हैं। हाई वोल्टेज हैंडल विथ केयर। जीते जाते गुरु तो करते हैं, वो भगवान जो गुरु के रूप में आते हैं उनको दो हड्डी और एक हैंडल विथ केयर वो करनी पड़ता है। हमारे भगवान शंकर अच्छे बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छे लगे रहो, सेवा करना सीखो, वहां पर कोशिश करो कि कोई गलती नहीं करना, वो बीच में नहीं टोकेंगे, नहीं तो श्लोक के बीच में टोक देंगे तुमको। गुरु के साथ निपटना जरा मुश्किल टेढ़ी घीर होती है, एक तो मौका भी नहीं मिलता है, कोई गुरु लोग ऐसे थोड़ी होते हैं डायमंड डजन इतने सारे घूम रहे हैं, किसी गुरु पकड़ लो, दीपक लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलते ज्ञानवान गुरु, ये सच्चाई है। चारों तरफ जो है वह अनेकों गुरु लोग होते हैं। शंकराचार्य जी भी जब अपने गुरु को ढूंढने निकले, केरला से निकलते हुए पता लगा कि यहां नर्मदा तट पे उनको उनके गुरु जी एक मिले। ये पूरे देश में अनेक बड़े बड़े योगी हैं, महात्मा लोग हैं, भक्त लोग हैं, सेवक लोग हैं, लेकिन गुरु जल्दी नहीं मिलते। और गुरु मिले हैं वहां पे उनके साथ हैंडल रहना भी मुश्किल होता है, सबके बस की बात ही नहीं होती। तो ये जो यहां पे गुरु होते हैं हमारे सामने प्रकट है, ब्रह्म अगर गुरु है ना तभी आप भी बन सकते हैं ब्रह्म। अगर जीते जागते गुरु ब्रह्म नहीं देखे जाते हैं तो जीता जागता शिष्य कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप अपने जीवन में जीते जी ज्ञान प्राप्त कर सकने की अगर संभावना रखते हो तो कोई जीता जागता है वो ब्रह्म है, इसकी श्रद्धा तो रखनी चाहिए ना। इसीलिए गुरु को ब्रह्म देखना और उसी भावना से जैसे भगवान को हम प्रेरित करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, नमन करते हैं, तो ये लोगों को गुरु को ही ब्रह्म देख के ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम्। इदम नमः ये प्रणाम उन गुरुदेव के चरणों में, ये प्रणाम उनको जाता है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट गुरु जिनका वर्णन हमने पहले 3 लाइन में करा है। श्री दक्षिणामूर्तये, वो हम जानते हैं मूल रूप से इज फॉर्मलेस, इज ऑल परवेसिव, इज हाईली दक्ष। दक्ष तो वो दक्ष है, हर काम में दक्ष है, इसीलिए ज्ञान देने में भी दक्ष है। ऐसे गुरुदेव को हमारा ये प्रणाम। तो महाराज जी आपके गुरु जी कौन है जरा हमको भी तो परिचय कीजिए। तो बोलते हैं हाँ सुनो, ये पहला श्लोक देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में थोड़ा आगे इसमें प्रवेश करेंगे। तो ये एक श्लोक हम यहाँ पढ़ते हैं, आप लोग रिपीट करिएगा। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत्। भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये तो ये यहाँ का ओपनिंग स्तोत्र का पहला श्लोक है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोक। आपको जो है वो हाईली रिकमेंडेड थी, याद कर लो, कम से कम एक तो याद ही कर लो, बाकी संभव हो तो पूरा याद कर लो, फिर तो सोने में सुहागा। लेकिन एक को याद करना बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, कैंप के अंदर ही याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है खाने के समय की ये रीति है कि खाने के समय दूसरी चर्चाएं नहीं होती हैं, कोई श्लोक का पाठ होता है। बहुत अच्छा मसाला है इसके लिए। ये श्लोक जिस मीटर में है उसको बोलते हैं शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित में चार लाइनों के ये श्लोक होते हैं और एक में 19 सिलेबल्स होते हैं हर लाइन में, तो बड़ा पोएटिक कंपोजिशन होते हैं। अनेकों गीता के श्लोक अलग मीटर्स में होते हैं, कहीं कोई दूसरा अलग भिन्न भिन्न मीटर्स होते हैं। इस मीटर को बोलते हैं शार्दूल विक्रीडित और इसमें ब्रेक करते हैं 12 एंड 7 के गैप से। पहले 12 जो है सिलेबल यूज करते हैं और बाद में 7 का यूज करते हैं। चैंटिंग का सिस्टम है ये सर, मीटर्स बड़ा देखो। और ये लोग की भी क्या विद्वत्ता होती थी, कुछ लिखते थे श्लोक फॉर्म में लिखते थे, यहाँ पैराग्राफ में लिखने में जो है मुसीबत हो जाती है। और वो भी इतना परफेक्ट बैलेंस कि अगर 19 सिलेबल्स होने तो 19 ही होते। और ऐसा नहीं कि दो चार श्लोक लिखते हैं, महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं, हजारों श्लोक। रामायण के अंदर, भागवत के अंदर इतने श्लोक लिखते हैं जैसे श्लोकों में बोलने का अभ्यास है। आप उसे बात भी करते होंगे तो श्लोकों से बात करते होंगे क्या, ऐसा उनका सामर्थ्य देखता है, इतना इजीली फ्लो आउट करते हैं सब श्लोक। तो ये उनके ज्ञान, उनकी विद्वत्ता, लैंग्वेज पे कमांड, अपनी भावना पे कमांड, उसमें इसी लैंग्वेज से क्या कम्युनिकेट करते हैं, प्रोफाउंड चीजें, नमन है सो। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम्, उनको इतना नमस्कार। शार्दूल विक्रीडित के लिए नहीं, ये श्लोक के लिए नहीं, उनके जो उसमें विचार दिए हैं, अद्भुत विचार। इसका प्रारंभ वो करते हुए कहते हैं कि हमारे जो ये गुरुदेव हैं उन्होंने अपने आप को स्वात्मान मेवा द्वयम, अपने स्वात्मा अपनी आत्मा को, मैं को, हम लोग अपनी मैं को एक व्यक्ति समझते हैं। भगवान की कृपा है, अच्छे हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सेवा भावी हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, अच्छा है, लेकिन है व्यक्ति, इंडिविजुअल है। ये हमारे जो गुरुदेव हैं वो अपने आप को अद्वैत देखते हैं, नॉन डुअल। कोई द्वैत नहीं हमारे दृष्टि से, हमारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इतने बड़े हो गए, इतने विशाल हो गए, इतने ऑल एम्ब्रेसिंग हो गए और उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ये भी बात सही नहीं है कि हम सबको एम्ब्रेस कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हमारे अलावा कुछ नहीं है। ऐसा रियलाइजेशन, ऐसा परसेप्शन, डायरेक्ट अनुभव कि जो मैं की रियलिटी है, दैट अलोन इज। बाकी चीजें तो दिख रही हैं, उल्टे दिख रही हैं, बट इट इज नॉट देयर। अनेकों चीजें दिखती हैं हमको, जो है इंद्रधनुष दिखता है, होता है क्या? हमको जो है मिराज वाटर दिखाई पड़ता है। रेगिस्तान में चले जाओ, दूर से झिलमिलाता हुआ पानी दिखाई पड़ता है, होता है क्या? बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो अनेकों चीजें यहां पे जो दिख रही हैं उनके बारे में खूब गहराई से चिंतन हुआ, विचार हुआ और रियलाइजेशन हुआ कि ये सब चीजें एक सब्सटेंशियल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इनका। किसी निमित्तवशा दिखने लगी ये चीजें। अब इसको जो है भगवान की जादू शक्ति बोलो, हमारे लोकल जादूगर भी दिखा देते हैं भैया, ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं जो होती नहीं है। हम मुंह बाय मुंह देखते रहते हैं, स्टेज के ऊपर बुलाते हैं, बोलते हैं कि हमको एक वॉलंटियर चाहिए, आप चिंता मत करना, कुछ आपको नहीं होगा, थोड़ा आश्वासन दे के बुलाते हैं और एक वॉलंटियर चला गया। वॉलंटियर वहां जाता है, बोलते हैं कि हाँ, उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं, सुला देते हैं टेबल पे, और फिर बोलते हैं कि हम इसके अंतःकरण की शुद्धि करेंगे। एक बड़ा सा वो जो आ रहा होता है वो लाके उसका हृदय की तरफ चीरा मारते हैं, विदाउट ग्लव्स उसका हृदय चीरते हैं, छाती में से उसका हृदय निकालते हैं और दिखाते हैं देखो काला है, एक काला दिल वाला है। फिर जमूरे को बुलाते हैं कि जमूरा एक बाल्टी में सर्फ घोल के ले आओ। सब लोग मुंह बाए बैठे रहते हैं कि क्या हो रहा है, हमको दिख रहा है। यहां एक बार मैजिशियन आया इंदौर में, रविंद्र नाट्यग्रह में, तो हम लोग ये सब पढ़ा करते थे, माया 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 भी तो हम लोग जाके देखेंगे और हम लोग माया को जो है निपटने की क्षमता रखते हैं, हम माया को देखते हैं, हम पकड़ लेंगे। हमारे सामने ये सब चल रहा था, हम बार बार आंखें मल रहे थे लेकिन हमको दिखाई वही पड़ रहा था, हमको दिखाई नहीं। वो जमूरा जो है बाल्टी में सर्फ घोल के लाया, पूरा फेना मेना था, उसने हृदय निकाला, उसको बाकायदा अपने ही जो है कपड़ों की तरह धोया और पिंक हो गया वो, इतना साफ सुथरा। और वो ही नैपकिन जिससे उसने पहले क्षण पहले नाक पोछी थी उससे उसने उसको सफाई करी। हमारे हृदय को ऐसे गंदे नैपकिन से साफ कर, और बाद में जो है उसको रीइम्प्लांट कर दिया, बाकायदा उसने हृदय में डाला, कोई स्टिचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसमें। और बाद में वो खड़ा हो गया, चेहरे पे चमक एक्स्ट्रा उसको दिखाई पड़ रही है। सब माया है, दिखने की बातें होती ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। पिक्चर की दुनिया है, दिख रही इस पूरा स्क्रीन के ऊपर, कुछ हो ही नहीं रहा है। पहली पिक्चर में ट्रेन आ रही थी, लोग भागे थे उठ के, फर्स्ट पेरिस में जो मूवी का प्रेजेंटेशन हुआ तो पिक्चर ट्रेन ऊपर चली गई। बोले यार क्या इन्विटेशन दिया है, तो सामूहिक हत्या करवा रहा है जबकि ट्रेन चढ़ा रहा है ऊपर। तो धीमे धीमे लोग उसके अभ्यस्त हुए कि नहीं नहीं ये तो दिखता है होता नहीं है, और क्या इनग्रॉसिंग होता है। और अभी तो 3D मूवी आ गई है ना, 3D मूवी देखने गए, वहां एक शार्क ने जो है यूं पलटा मारा हमारे सर पे किसी तरह बचे। एक जगह माइंड की पिक्चर चल रही थी, उसने माइंड में जो है वो अपने तोड़े पत्थर अपने इंस्ट्रूमेंट से सीधे पत्थर हमारे ऊपर आए, जितने लोग बैठे थे सबको ये दिख रहा है हमारे ऊपर आ रहा है। ये सब माया है, ये शो है, यहां कोई पत्थर नहीं आ रहा है लेकिन दिख रहा है। सो इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड। हमारे अंदर भ्रम है कि ये सब चीजें रियल है। एक बार जो अनेकानेक दृष्ट पदार्थों को रियल समझता है उसका जीवन अलग हो जाता है। जो जो यहां पे मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं, भले हमारा शरीर का मैनिफेस्टेशन हो जाए या दुनिया में दूसरे लोगों का हो जाए, हम भी सही हैं वो भी सही है। अगर ये मैनिफेस्टेशन सही है देन इट्स अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर, एक अलग ही प्रकार के जीवन हमारे जीवन छोटे पने में प्रारंभ होगा, संकुचिता में प्रारंभ होगा, हम खंडित रहेंगे, फ्रैगमेंटेड रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे। पहले अपनी नासमझी में हम अपने आप को छोटा करते हैं, खंडित करते हैं, संकुचित करते हैं, उसके उपरांत जो है उपदेश देते हैं नहीं बेटा सबसे प्रेम करो। तो कर तो रहे, कोशिश कर रहे, इन लोगों से कैसे प्रेम करें, इतने नालायक लोग हैं आप समझते नहीं हैं, कितने दिन तक प्रेम चल सकता है हमारा। तुम्हारे यही आचरण रहे, यही स्वभाव रहा, यही तुम्हारा भावना रही, हमारा प्रेम नहीं चल सकता है। तलाक तलाक तलाक, तुम अपने रस्ते हम अपने रस्ते, ये सब हमारा चलेगा जब हम अलग हैं आप अलग हैं। अनेकों चीजें प्राप्त करने वाली बन जाएंगी, अनेकों चीजों का अभाव होगा। इस बड़ी सी सुंदर सी अद्भुत सी दुनिया हम देखते हुए यहां बहुत सारी चीजों की प्राप्ति के लिए जीवन समर्पित कर देंगे और कुछ चीजें जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पूरा जीवन का रूप ही अलग होगा अगर ये जो भी प्रतीमान दिख रही है दुनिया इट इज रियल, इट्स अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। और ये बोलते हैं हमारे जो है ना ये गुरुदेव, हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान, ये अनेकों मैनिफेस्टेशंस को रियल देख ही नहीं रहे, इनकी दृष्टि में प्रतीति होती है। प्रतीति इज नेवर अ प्रॉब्लम, प्रतीति होती है लेकिन ज्ञप्ति नहीं होती है, दृष्टि होती है लेकिन निश्चय नहीं होता है कि ये रियल है। इनकी दृष्टि में इट इज कंपेरेबल टू कोई भी चीज आप काल्पनिक देख रहे। भगवान शंकर उमा जी को भी यही बोलते हैं, जिसका रेफरेंस देते रहते हैं कि उमा ये सपना है, सपने में रोज रात को जो है हम लोग कुछ ना कुछ देखते हैं मगर कहां होता है। एक ऐसी दुनिया में क्रिएटिव शक्ति होती है जो कि अनेकानेक चीजें प्रेजेंट करती है हमारे सामने, लेकिन तो भी उसकी कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी। This is the truth of life. एक ऐसी जादुई शक्ति यहां हर क्षण ऑपरेट कर रही है, एंड वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ दैट क्रिएटिव शक्ति। हम सब मैनिफेस्ट हुए हैं, द मैनिफेस्टेशन इज ब्यूटिफुल, ऑसम, और इसीलिए हम इसको पकड़ लेते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। व्यवहार में हम एक लिमिटेड व्यक्ति होकर जीते ही हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल डायरेक्टली तो इसी मन और बुद्धि पे ही होता है, इसीलिए हम हो जाते हैं। हमारा मैनिफेस्टेशन अलग है, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन अलग है, हम ड्यूअलिटी क्रिएट करते हैं, द्वैत क्रिएट करते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति का जीवन द्वैत में होता है। हम अपने भगवान का स्मरण करते हैं, अपने ज्ञानवान गुरुदेव का स्मरण करते हैं, किस तरीके से हम गुरु का स्मरण करते हैं? गुरु की आरती में क्या बोलते हो? गुरु तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे, गुरु तो आशीर्वाद मिल जाए तो धंधा भी अच्छा हो जाएगा और अनेकों बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। जय हो गुरुदेव, जय हो। महाराज जी एक बीमारी बची वो भी निपटा दो, आपने काफी निपटा दी है, आप हमको जो है जरा यहां पे सर पे हाथ रख दीजिए, सर में प्रॉब्लम जरूर हुआ है, क्योंकि हमारे गुरुदेव जहां पे छोड़ते हैं वहां का गुरु कसम हो जाता है। जरा लोग अनेक अपनी श्रद्धा में पीड़ा में मुसीबतों में किसी से ऐसी अपेक्षाएं करते हैं और उसको दूर करते हैं। अनेकों तीर्थ में अनेकों तीर्थ स्थानों में आप देखिए यही भावना है, पीड़ा दूर कर देते हैं। दैट इज हाउ वी लुक अप टू आवर गुरुज। यहां बोलते हैं भाई हमारे गुरुदेव स्वात्मानम अद्वयम साक्षात कुरुते, जो अपने आप को उस अद्वय में सब ड्यूअलिटी उनकी दृष्टि से खत्म हो गई है, ना वो व्यक्ति की तरह से है ना कोई व्यक्ति उनके लिए रियल है, हर व्यक्ति ब्रह्म है। अरे कि कोई छोटी जाति बड़ी जाति का चक्कर ही नहीं है, हमारे गुरुदेव की दृष्टि तो देखो। अरे जी हिंदू लोग ही ब्रह्म है क्या? बोलते नहीं भैया, दूसरे भी धर्म वाले सभी ब्रह्म है, इज नो डिविजन, ड्यूअलिटी नहीं है। एक बार ड्यूअलिटी हो जाती है फिर हम भी नाम देते हैं उनको। हम ऐसे गुरुदेव को ये नमस्कार करते हैं। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, जाति हो नीति हो कुल हो गोत्र हो। आजकल हमारे राहुल गांधी को गोत्र मिल गया है, गौतम गोत्र। वो अपने आप को बोलते हैं कि हम गौतम गोत्र के, पता नहीं कहां से ढूंढ आड़ के लाए। तो राहुल गांधी गौतम अपना नाम लिख रहे हैं, बता रहे हैं आजकल वो इलेक्शन तक बताएंगे, उसके उपरांत मुल्ला जी बन जाएंगे वो। ये नाटक चलता है, बोलते हैं भैया चलो ये तो दुनिया का खेल देखो, बड़ा मजेदार खेल है, लेकिन ये हमारे नमस्कार उन लोगों को नहीं जाते हैं। हमारे नमस्कार जाते हैं वो जो भी हो, यह इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोनाउन। यूनिवर्सल प्रोनाउन इज नाइदर मेल नॉर फीमेल नॉर दिस व्यक्ति नॉर दैट व्यक्ति, यूनिवर्सल प्रोनाउन। ये यूनिकनेस है संस्कृत की, यूनिवर्सल प्रोनाउंस किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं होते। यह जो भी हो जिसके अंदर ये है, हम ना उम्र देखते हैं ना हम देखते हैं अष्टावक्र हैं कि शरीर अच्छा है, इज लुकिंग स्मार्ट एंड यूजिंग यंग, बोलते हैं नहीं ये उनके लिए नहीं है। जिसके अंदर ये ज्ञान हो, यह साक्षात गुरु तेरे, डायरेक्ट रियलाइजेशन उनके अंदर इस चीज का विराजमान है। प्रबोध समय स्वात्मान में बात हो, जब वो जगे जागृति का स्वरूप ये हुआ कि अपने आप को अद्वैय डिस्कवर कर। अद्वैय की डिस्कवरी, नॉन ड्यूअलिटी की डिस्कवरी, जहां पे सब चीजों की आत्मा को देख। अद्वैय जो देखता है ना, वो अपने आप को ही ब्रह्म नहीं देखता है, वो हर व्यक्ति को ही वही ब्रह्म देखता है। इतनी इज्जत कोई नहीं बख्शता है। बाकी अनेकों धर्म बोलते हैं, और सिनर्स पापी लोग, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो है ना ये पाप करा था उसको भुगतो, और तुम भुगत भी नहीं सकते, वो तो रिडीमर आएगा तो तुम तुम्हारा उद्धार करेगा। सबके अपने अपने सोच होती है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द डिफरेंस। यहां पे क्या दृष्टि है? आपको ब्रह्म देखा जाए, हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, हर व्यक्ति ब्रह्म है। ये हमारे जो है योगी राज, दयावान, सब ब्रह्म स्वरूप है, पता नहीं है बस उनको। लेकिन दे द सेम सच्चिदानंद, सो लविंग, आनंद स्वरूप है, इतना प्यार देते हैं। हमारे वहां एक यंग स्टूडेंट्स होते हैं, यंग कुत्ते होते हैं, और उसमें सीनियर कुत्ते भी होते हैं, वो ज्ञानी कुत्ते होते हैं, ये कभी अज्ञानी है, अज्ञानी बीच में घुसते रहते हैं, यहाँ सत्संग हॉल में बैठ के जो है वो नीचू चबाते रहते हैं, वो यंग है अभी, बच्चा है वो भी, लेकिन सीनियर वाला कभी नहीं आएगा यार, प्रवचन के बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कभी नहीं मानते हैं इनको, किसी को कभी नहीं डिस्टर्ब करते। एज लॉन्ग एज वो आदमी सच्चाई से ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, भजन कर रहा हो, गड़बड़ आदमी आएगा तो पहचान लेगा, वो आगे एंटर नहीं करने देता। एक सज्जन ने तो कहा कि भाई हमारा कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है, अब हमारे पास ये प्रश्न है कि हम कुत्ते पे भरोसा करें कि तुम्हारे शब्दों पे भरोसा करें, और हमारा अनुभव ये बोलता है कि आई बेटर बिलीव माई डॉग रादर देन आई बिलीव यू। हम तो इसके विवेक पे भरोसा रखते हैं क्योंकि ये सदैव सत्ता देखता है, तुम्हें कुछ गड़बड़ है। हमारा अनुभव बताता है जब जब हमारे दोनों जो प्राणी लोग हैं ब्रह्म के मैनिफेस्टेशंस, ये जब किसी पे भौंकते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ शंका करते हैं, बड़ा आदमी इसके बारे में अलर्ट रहो। कभी कभार वो कोई भोजन वोजन कर रहा हो गुस्सा हो जाए अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों को जनरली गुस्सा करते हैं। हमारे पहले एक और थे, उनका नाम था भीमा, और सबके नाम भी ऐसे ही हैं, सब भगवत स्वरूप नाम है। तो वो जो है ना, वो एक बच्ची थी, उसको सदैव जब भी आ जाए, वर्षों के बाद आए, उसको नहीं छोड़ता था। और बाद में पता लगा कुछ गड़बड़ निकला उसके इंटेंशन से। एक तो चप्पल चोर आते हैं आश्रम में, हम तो नहीं पहचान पाते, वो पहचान जाते, नहीं छोड़ते। उनकी यूनिकनेस है, उनकी विशिष्टता है, लेकिन है वही प्रेम स्वरूप, सभी प्रेम स्वरूप है, पूरी दुनिया इतनी सुंदर है, एवरी मैनिफेस्टेशन इज डिवाइन। तो हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, जब अपने आप को वो अद्वैय देखते हैं ना, तो सबको अद्वैय देखते हैं, अद्वैय के अलावा कुछ नहीं। That is the fundamental truth of this world. अब ये प्रबोध समय आपने बताया, ये साक्षात गुरु थे, प्रबोध समय, प्रबोध के समय। महाराज जी प्रबोध कैसे हुआ उनके अंदर? किसी के अंदर भी प्रबोध कैसे होता है? बोलते हैं फर्स्ट टू लाइन्स, प्रबोध की यात्रा। प्रबोध मतलब प्रकृष्ट बोध, साक्षात डायरेक्ट रियलाइजेशन, द अवेकनिंग, प्रबुद्धता। प्रबुद्धता के वजह से ही गौतम बुद्ध का बुद्ध नाम पड़ा, पहले नाम सिद्धार्थ उनका, फिर वो गौतम नाम से भी जाने जाते थे। जब प्रबुद्ध हुए तब उनका नाम पड़ गया गौतम द बुद्ध। तो ये प्रबुद्ध हो जाते, तो ये प्रबुद्ध जब हो गए तब तो वो अपने आप को इस डायरेक्टली परसीविंग के, हम तो नॉन ड्यूअल है और नॉन ड्यूअल में हमारा कोई जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण की समाप्ति अपने आप को अद्वैत समझने से होती है। तो ये अपने आप को ऐसे अद्वैत देख रहे हैं, इन्फिनिट देख रहे हैं, जगत का अधिष्ठान देख रहे हैं, परम सत्य देख रहे हैं, सृष्टि के आदि में जो था वो हम है, और इस समय पूरे सृष्टि के आधार की तरीके से भी हम हैं, और पूरी दुनिया एक दिन हमारे अंदर ही विलीन हो जाएगी। ऐसा जिनका परिचय प्रबोध समय साक्षात गुरु थे, प्रबोध समय में ये उन्होंने साक्षात डायरेक्ट इस चीज को देखा। इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है मुक्त नहीं करती है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज हमको दिशा देती है। इंटेलेक्चुअल नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं कोई ना कोई तो दिशा मिलनी चाहिए ना, तो वहां पे अनेकों चीजें हम सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन जो सुनते हैं जो पढ़ते हैं वो जब हम खुद देख लेते हैं उसको बोलते हैं साक्षात्कार। ये डायरेक्ट रियलाइजेशन यही हमको मुक्त करता है, बाकी कुछ मुक्त नहीं करता। इंटेलेक्चुअल नॉलेज आप दुनिया भर की जमा कर लीजिए तो भी वो व्यक्ति फंडामेंटली वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो इन्होंने तो डायरेक्टली ये चीज देखी है और अपने आप को अद्वैत जान रहे हैं। तो इसकी यात्रा कैसे हुई महाराज जी, प्रबोध कैसे बोलते हैं, प्रबोध के लिए विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, एक इस चीज के ऊपर इंक्वायरी से यात्रा प्रारंभ होती है कि हमको जो भी दिख रहा है, पूरा विश्व जो दिख रहा है वाइब्रेंट है, दिव्य है, अद्भुत है, होल कॉस्मोस, होल क्रिएशन, आपको जो भी दिख रहा है इसके ऊपर विचार करो गंभीरता से। आज जो हमको दिख रहा है वो सब सच दिख रहा है। ज्ञान के बाद हमको ये दिखाई पड़ता है कि दिस इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन जिसका सब्सटेंशियल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन दिख रहा है। तो बोलते हैं महाराज जी ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हमको दृष्टांत दीजिए। बोलते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, दर्पण मतलब शीशा, दर्पण के अंदर आपको जो भी शहर दिख रहा है। अब आप खड़े हुए हैं, आपको दर्पण के वजह से पूरा शहर पीछे दिखाई पड़ रहा है, रिफ्लेक्टेड है, पूरा शहर दिखाई पड़ रहा है। शहर क्या दर्पण में है? हम खुद शीशे के सामने जब खड़े होते हैं आप दिख रहे हैं अपने आप को, एक तो यहां दृष्टा की तरीके से खड़े हैं और एक दर्पण के अंदर दृश्य की तरीके से खड़े हैं। पूरी फाइन डिटेल्स में शीशा आपको दिखाता है, कैसे क्लियर शीशे होते हैं, कितने सुंदर सुंदर शीशे होते हैं, आपकी एक एक बाल एक एक झुर्री दिखा देते हैं। शीशा जो है हमको दिखा रहा है, तो यहां दो स्वामी जी खड़े हुए, लेकिन हम लोगों के अंदर कभी भ्रम नहीं होता है कि यहां दो व्यक्ति हैं। इवन दो प्रतीति हो रही है, लेकिन निश्चय क्या हो रहा है कि दिस इज नॉट रियल। आचार्य बोलते बस एग्जैक्टली ये ही एटीट्यूड आप दृश्य दुनिया की तरफ रखिए। ये इंक्वायरी से निश्चय करना चाहिए, हमारे कहने से मत मान जाना, तुम विचार करके निश्चय करो। जो पूरी दुनिया है आज तक हमने इस दुनिया को सच्चाई दी है। बोलते हैं ये हमारे गुरुदेव हैं, इनको कुछ दूसरी बात पता है, दुनिया को एक अलग नजर से देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि एक स्वप्न है, या इस एग्जाम्पल के हिसाब से शीशे के अंदर रिफ्लेक्टेड दुनिया है। जो ये प्रतिबिंब दिख रहा है, बिंब होगा कहीं पे, दैट इज नॉट द इशू, लेकिन प्रतिबिंब जो शीशे में दिख रहा है, इट डजेंट हैव एनी एक्सिस्टेंस। आपको इस तरीके से दुनिया को रिलैक्स्ड होकर देखना चाहिए। कोई चीज को आप देखो कि दिख रही है रियल नहीं है तो आप मजा ले लो। अब वो जादूगर ने जहां उसके अंतःकरण की शुद्धि करी थी ना, हमको पता लगा, पता है कि ये सब नाटक हो रहा है। कौन आरे से लेके यहां पे किसी व्यक्ति को बगैर एनेस्थीसिया के आरे से काट के हृदय निकालेगा? हमारी बुद्धि बोल रही है कि सब बेकार की बात है, मुझे दिख रहा है ना, हॉल को दिख रहा है, पूरे ऑडियंस को दिखाई पड़ रहा है, और सबका मुंह बाहे बैठे हक्के बक्के होके मुंह खड़ा हुआ है आश्चर्यचकित देख रहे, खून नहीं निकला अभी तक लेकिन दिख रहा है भाई, हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर दिख रही है, सपना दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। There are so many examples कि हमको अनेकों चीजें दिख रही हैं, but it's not real। क्या आप दुनिया को इस नजरों से देख सकते हैं? That is the starting point। इसीलिए दुनिया को इग्नोर ना करो, दुनिया को द्वेष मत करो। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि दुनिया से द्वेष करो, दुनिया जो है द्वेष डिजर्व नहीं करती है। आप जब किसी से गुस्सा होते हैं, द्वेष करते हैं ना, आप उसको महत्व देते हैं, और जब किसी के प्रति अटैच होते हैं तो भी आप महत्व देते हैं। अगर हम किसी को महत्व प्रदान करते हैं तो उसको आपने इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस दे दिया है। ये गलत है। आप इसी सिचुएशन को भिन्न प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। जो भी यहां पे मैनिफेस्टेशंस हैं उसको लाइटली लो, अपने सपने को याद कर लो। सपने में आप चीजों को, अगर जग गए सपने में फिर कैसे सपना देखोगे? अगर जग गए, जब तक सोते रहते हैं तब तक वहां का शेर हमको दौड़ाता रहता है और हम भी अपनी धोती होती लपेट के अच्छी तरह भागते हैं। लेकिन अगर जग के सपना देख रहे हो, ये जान के कि ये सपना है, कैसा सपना होगा? हम रिलैक्स्ड होंगे, हम हो सकता है ड्रामे का पार्ट भी हो, हम उसी जो है ड्रामे के अनुरूप एक्टिंग भी कर लें, लेकिन हम जानते हैं कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया को इस नजरों से एक प्रबोध प्राप्त करने वाले व्यक्ति को देखना चाहिए। इसीलिए तो भगवान गीता में भी अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन ये कोई परिस्थितियों में बैलेंस रखो, यह हर्ष विषाद डिजर्व नहीं करता, अनेकों खुशी और गम तुमको बाहर की चीजों से होता रहता है। ये बचपना है तुम्हारा, इमैच्योरिटी है तुम्हारी, हमको जीवन की सच्चाई नहीं पता है, वहां टेंशन लो इतना ज्यादा, भिन्न नजरों से देखो। अब ड्रामे के पार्ट में तुमको ऊपर से जो भी काम करना हो तुम अपना विवेक का प्रयोग करो, लेकिन हम बात कर रहे हैं तुम्हारी दृष्टि के बारे में। कुछ भी हो, कुछ भी हो, इस सत्य को कभी बाधित न होने दो कि जो भी प्रतिमान जगत है, दृष्ट जगत है, ये भगवान की माया है, एक शो है। मेरा नाम जोकर में राज कपूर जी ने कुछ इसी अंदाज में सब पूरी प्रस्तुति करी। ये जीवन एक शो है 3 घंटे का, उन्होंने पूरा उसी से कोरिलेट करने की कोशिश करी। सब शो चल रहा है थोड़ी देर का, और जैसे हमारा बाहर का शो खत्म हो जाता है, ये शो भी खत्म होने वाला है। किसका कब खत्म होगा पता ही नहीं, मगर उस दिन के बाद ये शो नहीं रहेगा। यही नहीं है कि एक दिन यह खत्म हो जाएगा, यहां पे रहते रहते भी तुम्हारे हृदय की जो आकांक्षा है वो बाहर से कभी नहीं पूरी होगी। इसलिए जितना शीघ्र इन चीजों को तुम महत्वविहीन कर दो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। तुमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं दूसरों को नहीं चाहिए, दूसरों को जो चाहिए तुम जो भी सेवा कर सकते हो करो। तुम्हारे अंदर जो कार्य हो बड़े प्रेम से उत्पन्न हो, सबका कार्य करते रहो। जैसे बच्चों के साथ भी खेलना होता है, गुरु जी कैरम बोर्ड खेलेंगे, बोला खेलो ले आओ, कैरम बोर्ड खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, कमाल गुरु जी एक गेम हो जाए थोड़ा सा, चलो बिल्कुल आ जाओ। और कई बार बच्चों को हराने लगो ना तो गुस्सा हो जाते हैं, नहीं 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 हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, आप तो बहुत हराते हैं हमको, फिर हार जाते हैं उनके साथ, उनको जिता देते हैं। कई बार हमको जिता देते हैं, कई बार वो खुद अपने स्मार्टनेस से भी जीत जाते हैं, लेकिन हम हार गए तो हमको कोई गम नहीं होता है, और हम जीत गए तो हमको कोई विशेष हर्ष भी नहीं होता। हाज तो है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम तो हाज जीत गए, किससे? ये छोटे बच्चे से। अब लाइट ही लेते हैं, आचार्य बोलते हैं सेम एटीट्यूड रखो, इस दुनिया के बारे में इसको सदैव ध्यान रखो, ये शो है 3 घंटे का, पूरे मूवी चल रही है। आजकल की आधुनिक भाषा में 3D मूवी चल रही है, और ये 3D मूवी खत्म होने वाली है। इस अंदाज से दुनिया को देखना चालू करो, ये प्रबोध की दिशा में यात्रा है। पहला पॉइंट, इस तरीके से अगर तुम्हारे लिए बाहर की चीजें बहुत रियल रही तो तुम फंस गए इसे कर। जो व्यक्ति बाहर की दुनिया को रियल समझता है, महत्व देता है, वो ही आदमी अज्ञानी होता है। अज्ञान का लक्षण अपने आचार्य लोग ही बता रहे हैं, टेक इट लाइटली। दूसरे शब्दों में दुनिया को लाइटली लो, बाहर के सक्सेस और फेलियर्स में चिंता मत करो। अरे जी भगवान ने बहुत खुशियां दी हैं, लेकिन लेकिन भी है ना, आप जानते हैं, लेकिन तो मत चिंता करो। न यहां की बाहर की खुशियां, न गम, न यहां अचीवमेंट्स, न फेलियर्स, कैन टेक इट लाइटली। फिर हम लोग आगे की यात्रा करें। अगर तुम इसी लेवल पे उलझे हुए हो, यही जो है अनेकों रूप अनेकों दुनिया, इसको बोलते हैं दुनिया घाट, ये दुनिया घाट में हमारी गाड़ी अटकी हुई है, तो बोलते हैं कैसे चलोगे आगे सवेरे से शाम, सोते हुए जागते हुए, सपने में भी ये दुनिया घाट के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। और सच्चाई क्या है? इट्स नॉट देयर। और हम इसी मरे जा रहे हैं। तो यहां पे हमारे गुरुदेव की दृष्टि बताते हुए कहते हैं, ही रिजॉल्व द वर्ल्ड, दुनिया को उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। गुरु तो देख रहे थे, वो बात कर रहे थे, चल रहे थे, बोलते सब करते हैं वो, भगवान शंकर सब करते नहीं है क्या? घूमते फिरते हैं अनेकों प्रकार से, कहीं पे जो है भक्ति का ज्ञान दे, भक्ति का उपदेश दे रहे, योग का उपदेश दे रहे, नाट्य शास्त्र में सभी नाट्य शास्त्र के आदि गुरु भगवान शंकर ही हैं, नटराज द डिवाइन कॉस्मिक डांसर सभी करते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि से देखो कुछ रियल नहीं है, ये सब एक शो है। और अगर कहीं पे तुम नाटक में हो तो नाटक के हिसाब से काम करना है, तो उचित है, कॉमन सेंस की बात है। हमको पता है ये हमारी रामलीला जो है ना सब नाटक चल रही है, लेकिन अगर हमको जो है हनुमान जी का रोल दिया गया तो हनुमान जी बन के जीना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि हनुमान जी बीच में जो है वो कहीं जो है अनेकों गांव के रामलीला होती है, वो हनुमान जी कर रहे हैं, वो पता लगा कि वहां पे कोई उनके मित्र आ गए, वहां से बोलते हाँ भैया रामलाल और फिर तो रावण तुम्हारा ऐसा क्या मजा। और फिर वर्मा जी आए, वर्मा जी देर में आए यार, जल्दी आते तो वो रामलीला ऐसा थोड़ी है। रामलीला करो तो पूरी रामलीला करो, डूब के करो, मजे में करो। अगर ये सब हमको ड्रामा करना है, परिवार है, काम धंधा है, जो भी है, सब प्यार से करो, लेकिन ये प्लस चीज रखो, ये शो 3 घंटे का, सब थोड़े दिन की कहानी है। इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट देयर। हमारे दृष्टिकोण से जिला को कोई अपेक्षाएं किसी से नहीं होती। अनरियल चीजों से क्या अपेक्षा करें, मूर्ख है क्या? कुछ रियल हो तो अपेक्षा करें, कोई है ही नहीं, वो दिख रहा है फोकट में, कोई प्रतीति दिख रही है जादू से, हम उसी में मरे जाए। तो ज्ञान के पथ पे इस प्रकार की दृष्टि का समावेश सबसे पहला कदम। और यहीं पे गीता में हमको बोलते हैं, अर्जुन तुम्हारा टेस्ट यही है कि जो उतार चढ़ाव आएंगे, हम खुशी गम देंगे, सुख दुख देंगे, मान अपमान देंगे, कैन यू रिटेन योर बैलेंस, नॉट डिस्टर्ब इनसाइड इट ऑल। ये नहीं है कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं बोला, देखो कुछ बोलते थोड़ी हम, बोलते नहीं हो लेकिन मरे जाते हो अपने अंदर, घुटन होती है, बेचैनी होती है, सपना भी हो जाता है, दर्द भी वो पुराना होता रहता है। हाँ भगवान की कृपा से बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हमारे दिल में एक कसक बनी रह गई। उन कसकों से निकलो, यही बोलते हैं कि बाहर की सब चीजों को रिजॉल्व करो। जो कुछ भी दुनिया में है वो केवल दिखने मात्र का है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, कंपेरेबल, डोंट टेक इट टू लिटरली। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम ये सीख रहे हैं। निजांतर्गतम, और ये जो पूरी मायामय दुनिया प्रस्तुत हुई है ना, पता है कहां है? बाहर नहीं है, निजांतर हमारे अंदर चल रही है। ये हमको लगता है कि हमसे बाहर चल रही है, लेकिन ये पॉइंट नंबर 2 उनके प्रबोध की प्रक्रिया में, द स्टेप नंबर 2, इस दुनिया को जो उन्होंने अच्छी तरीके से देखा कि ये एक मायावी प्रेजेंटेशन है, वो कहां हो रहा है, बाहर नहीं दिख रहा है, हमारे अंदर दिख रहा है। जैसे रात को सपना हमारे अंदर दिखता है, वैसे ये पूरी दुनिया हमारे अंदर दिख रही है। महाराज जी सुनते तो है लेकिन देखता नहीं है ये हमारे अंदर। हमारे अंदर क्यों नहीं दिखता है बताए? क्योंकि हम आज भी अपने आप को शरीर मान के देख रहे हैं। किसके अंदर ये दुनिया दिखती है? जब आप अपने आप को कॉन्शियसनेस देखें, आपकी अवेयरनेस देखें, पूरी दुनिया आपकी अवेयरनेस में एग्जिस्ट करती है। अवेयरनेस का ही तो ऑब्जेक्ट है ना ये। हमारी अवेयरनेस में पूरी दुनिया, पूरा जीवन हमारी अवेयरनेस में है। आप अपने आप को शरीर देखोगे तो दुनिया बाहर हो जाएगी। आप अपने आप को एक अवेयरनेस देखिए, दुनिया आपके अंदर हो जाएगी। एक घड़ा जिस समय अपने आप को एक फॉर्म देखता है, घड़े की दीवार से आइडेंटिफाई करता है, उसके अंदर आकाश, वो आकाश के अंदर होता है। लेकिन आप आकाश की दृष्टि से देखिए, घड़ा उसके अंदर हो जाता है। एक दृष्टि यह होती है आकाश होकर देखो, सब घड़े आपके अंदर, लेकिन घड़े होके आप देखिए, आपके अंदर आकाश, हमारे अंदर आत्मा है। जब हमारे अंदर आत्मा है, कोई बोलता है तो वहां हम क्या है? शरीर। आप अपने आप को शरीर समझेंगे तो आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। आप अपने आप को कॉन्शियसनेस समझेंगे तो शरीर आपके अंदर आ जाएगा। है ना ये बात सही? तो ये यहां बोलते हैं कि ये हमारे गुरुदेव इस माया में मिथ्या दुनिया को देख रहे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं। पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्विभूतं यथा निद्रया। और ये जो बाहर है ना, दिखने लगता है भ्रम होता है बाहर है, बोलते हैं ये केवल इसीलिए दिखता है क्योंकि जैसे यथा निद्रया, जैसे रात को सपने में पूरा सपना आपके अंदर होता है, लेकिन सपना देखने के समय जब जग जाते हैं ना तो सपना अंदर था। सपने में होते हो तो क्या दिखता है? आप सपने के एक एंटिटी हैं, और सपने की दुनिया विराजमान। ऐसा लगता है हम कहीं ट्रैवल करके गए हैं किसी दुनिया में, किसी दुनिया में हम प्रवेश करके गए और पूरी कायनात विराजमान थी। आई एम अ विजिटर टू दैट वर्ल्ड। लेकिन जहां आप सपने से जग जाते हैं तो ये पूरी दुनिया आपके अंदर होती है। देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दीज स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपकी सपने की और निद्रा की अवस्था से बहुत कुछ सीखने का होता है। तो जैसे रात को सपने में होती दुनिया आपके अंदर है सपने की, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बाहर है, वैसे ही यहां पे जब तक अज्ञान और मोह होता है तब तक ये लगता है दुनिया हमसे बाहर है। लेकिन आप इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे तो ये दुनिया आपके अंदर दिखाई पड़ने। ऐसी दुनिया के बारे में दृष्टि की प्राप्ति से प्रबोध की यात्रा प्रारंभ होती है। प्रबोध की यात्रा इस ही ज्ञान और विवेक से प्रारंभ होती है। हमारे अंदर अनेकों मोह थे, वो मोह एक एक करके दूर होते हैं, और जिसके लिए पूरी दुनिया ऐसी बाधित हो जाती है, वो अपने अंदर अद्वैत अधिष्ठान का साक्षात्कार करता है। जिसके अंदर ये ज्ञान है, साक्षात्कार है, या साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवा द्वयम्, अपने आप को ऐसा द्वय जो ध्यानते हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। आप अपने गुरु को, ऐसे गुरु को प्रणाम करना चालू करो। जब तक आपके गुरु ऐसे नहीं होते हैं, आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए आपकी मुक्ति के लिए आपको अपने गुरु के बारे में ये कायदे की दृष्टि रखनी चाहिए। गुरु इज नॉट अ व्यक्ति, इज अ नाइस पर्सन, यू नो, वेरी स्मार्ट पर्सन, इंटेलिजेंट एंड वेरी लविंग एंड कंपैशनेट, वेरी केयरिंग एंड ऑल दैट, यू नो, नाइस पर्सन। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट सच अ पर्सन इन लाइफ। हाउ आर यू गुरुजी? अब हम अगर व्यक्ति देखते हैं, बोलते हैं योर डिस्क्रिप्शन, आप उनको व्यक्ति देखिए। अगर अपने भगवान को और अपने गुरु को कोई व्यक्ति देखता है तो जीवन भर व्यक्ति बना रहेगा, कोई उसको व्यक्तित्व तो से ऊपर नहीं उठा पाएगा। और अगर आप अपने गुरु को साक्षात ऐसा अद्वैत तत्व देखते हैं, नॉन ड्यूअल रियलिटी देखते हैं, अपने भगवान को और अपने गुरु को, केवल तब चांस होती है कि आपको जीवन में अद्वैत का डायरेक्ट ज्ञान हो पाए। सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आपकी दृष्टि अपने ही भगवान, अपने गुरु के बारे में। हम तो वैसे गुरु को ही प्रणाम करते हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। एक बार श्लोक को हम लोग दोबारा चैंट करते हैं, फिर इस सेशन का समाप्ति करते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतम्, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोत्। भूतं यथा निद्रया, यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती। नर्मदे हर गुरु गंगा मैया की जय।